کے پاس بہت سے کام ہیں اور وقت بہت کم ہو تو کون سا کام اس کو جلدی کرنا چاہیے؟ ایمان والا. اور اس وقت اس کو پتہ نہیں, اس وقت اگر زیادہ بھی اس کو اندازہ ہے تو انسان کی عمر 60-70 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اکثر آقا جی نے ایسا کہ میری عمر کی اکثر عمریں 60-70 کے درمیان ہیں, اتنے کم وقت میں انسان کیا کر سکتا ہے؟ اس میں پتہ نہیں کہ 60-70 ہوتا ہے یا 20 میں جاتے 30 میں جانا ہے تمہیں. اور دنیا کا وقت بہت تھوڑا ہے, چاہے 1000 سال بھی زندگی ہو لیکن موت کے وقت 1000 سال نہیں, چاہے ایک ہی زندگی اسے ختم ہو جائے. پھر اس میں انسان اصل کام ایمان کا پہلے کر لے, اچھا کر دوسری گزر جائے. اسی دنیا کے متعلق آکر کا روٹی کا ٹکڑا کافی ہے تمہاری کمر کو کھڑا, کہ تمہاری رہائش یہاں نہیں ہے. کہا دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب یا ایک مسافر رہتا ہے, کہ تم مسافر ہو. اور فرما میں بھی مسافر کی طرح آیا ہوں, جیسے کسی نے گزرنا تھا میں گزرنے آیا ہوں. لیکن رستے میں کوئی مسافر تھک جاتا ہے, فرما کسی سائے کو دیکھتا ہے, درخت کو دیکھتا ہے, تھوڑا آرام کر کے چل پڑتا ہے. تو جو سفر میں انسان کاروبار اور بڑی چیزیں کرتا ہے گزارے کے کام کرتا ہے, لیکن پھر ٹھکانے پہ جاتا ہے تو پھر ادھر سب کچھ کرتا ہے جو ٹھکانا اس کا ہوتا ہے. اب ٹھکانے کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں, کہ چل تو پڑے سفر میں, وہ اعمال کے لحاظ سے ہوگا, توبہ کے لحاظ سے ہوگا, تو ٹھکانا جنت ہے کہ جہنم میں پتہ نہیں. آپ بیماری ہو, صحت میں کچھ بھی ہو, آپ ظاہر سبب کرتے, آپ شفا ملتی نہیں ملتی, اللہ کا کام ہے, کرتے تو ہو. رزق کیا نہیں کہتے گھر میں بیٹھ جو ہونا ہوگا تقدیر میں, وہ تو ہونا اللہ نے لکھا, تم کو تم وہ تقدیر پڑھا کے نہیں بھیجا ہے. تم رزق تلاش کرتے 100 روپیہ مل جائے, ایک مل جائے, کسی نہیں بھی ملتا آ جاتا, کرتے ہو. ایسے جنت دوزخ کے کام ہے, کوشش کرے انسان کرتا ہے جنت کے کام, آگے دیکھو جنت کے کر کے مرتا ہے, دوزخ کے کرتے کیا قسمت میں لکھا, وہ تو بات کی بات ہے, لیکن ظاہر تو کرتے ہیں. تو سب میں سے زیادہ ان چیز پر اہمیت دینی چاہیے جس کو رسول اللہ نے فرمایا, اور جس کی اہمیت کا بہت کم فرمایا ہے وہ دنیا کا فرمایا, اور جس کا خطرہ بہت زیادہ فرمایا وہ دنیا کا خطرہ فرمایا, کہ یہ جادو سے زیادہ فرمایا اصل انسان کو اندھا کر دیتے. ہاں اب اس بحران سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ ایمان ہی ہم کو نکالے گا. انسان مسلمان ایک منٹ میں بن جاتا ہے کلمہ پڑھ, ایمان والا بننے کے کافی محنت کرنی پڑتی ہے. خدا نے ایسے اصول رکھا, ایک بچہ 40 سال میں جوان ہوتا ہے, ایک بیج آپ اس کو بوتے تو کچھ عرصے کے بعد سال کئی سال لگتے تو اس کا پھل ہمیشہ کھاؤ. ایک مکان بنا تو اس کے لیے اینٹیں جوڑنی پڑتی ہے, نیئیں پہ جا کے کہیں ہوتا, پھر اس کے جا کے ہوتا. یہ اصول ہے, ایک منٹ میں نہیں ہوتا. سننا مولانا صاحب, ہاں ہاں, تو لکما لکما کھا, ایک دم نہ کھا, جو پنجاب کے تتی تتی نہ کھا. اب تم کو کیسے سمجھاؤں تم کو, ہاں شکر نہیں نا خدا کا, جلدی نعمت مل گئی ہے نا. ایک بیچارے ذرا ٹھوکر تو نعمت کتنی قدر ہے, جس کے اندر کی روحانی دنیا کیا تھی, روحانی طاقت کیا تھی, نوجوان خدا سے زیادہ اس پر کرم کرنا نا. ویسے قدر نہیں تھی, تھوڑی سی غلطی اس نے کی, اس کو تکلیف بیچارے کو تھوڑی سی پہنچی, اس کو بہت قدر ہے کہ میں سب کچھ کھو سکتا ہوں, گھر بار کھو سکتا ہوں, ماں باپ کھو سکتا ہوں, لیکن ایمان والی اتنا حالت نہیں کھو سکتا. اس کو محسوس ہوا, اس کو دھکا لگا. تم کو شکر کرنا چاہیے, بیٹھے بیٹھے گھر میں کلمہ مل گیا, سب کچھ مل گیا. صحابہ جب کلمہ پڑھتے تھے تو کتنی مصیبت آتا تھا, گھروں سے نکلنا پڑتا تھا, اولادوں کو چھوڑنا پڑتا تھا, اور جو کلمے سے روکتے تھے جہاد کرنا پڑتا تھا. آقا جی نے مکہ چھوڑا, ہاں جی, اور روئے وہاں. صحابہ نے مدینہ چھوڑا, حبشے گئے, کہاں کہاں گئے, چھپ چھپ کے نمازیں پڑھنی, کتنی تکلیفیں آنی. تم کیسی تکلیفیں ہیں؟ وہ جو ایمان لاتے تھے تو مصیبتیں ٹوٹتی تھیں, بلائیں ٹوٹتی تھیں, ہاں جی, اپنے بھی پرائے پرائے اپنے بھی پرائے ہو جاتے تھے, آپس میں دشمنیاں. تم ایمان کیوں لائے, تم نے کلمہ کیوں پڑھا؟ ہاں جی, ہم لوگ بیٹھے بیٹھے گھر میں ملے, میں نے قدر نہیں لیا. بہرحال انسان یہ کوشش کرے کوئی ایمان کی حالت میں جائے, آپ کے ساتھ نہ دولت جائے گی نہ چیز, سب ہم کو پتا ہے, لیکن ہمارے دل کی کیفیت ایسی نہیں ایمان والی نہ. ایمان والی ہو تو ہم زیادہ آخرت کو روئیں, زیادہ قبر کو روئیں, زیادہ موت کو روئیں, زیادہ توبہ کو روئیں, زیادہ دنیا کو نہ روئیں. ہم زیادہ دنیا کو روتے ہیں, مال اولاد کو روتے ہیں, اور یہ دو چیزیں خدا سے انسان کو دور کرتی زیادہ. اگر اس کی محبت اندر گھس گئی, اگر حقوق تر رہی تو ٹھیک ہے, لیکن اللہ رسول اللہ کے حقوق پہ غالب ہو گیا, خدا سے زیادہ پیار ہوگی مال اولاد, پھر تو اس کے لیے وبال ہی وبال ہے. जैसे आका जी का जो अपनी औलाद को अच्छी हालत में छोड़ के गया और खुद बुरे हाल में खुदा के यहाँ गया, उसके लिए हिलाकत है। किसे इतना दिल नहीं लगाना तुम खुदा रसूल को भूल जाओ, मोहब्बत माल के औलाद। लेकिन जब वो मोहब्बत खुदा वाली कैफियत गालिब होगी तो होगा ना, कि मौलाद पे मेहनत करते हैं, माल पे मेहनत करते हैं, कदर आती है, ये ऐसे मिलती नहीं है ना। एक शादी करते कितनी मुसीबत से होती है, ठीक है, एक पैसा कमाते कितने अजाब से कमाते, इसकी कदर आती है। ऐसे ईमान भी खुदा के मेहनत करो तो मिलेगा, बैठे बिठाए नहीं मिलेगा। नफले पढ़ो, नमाजें पढ़ो, तौबा करो, फिर शैतान नफ्स तुम्हारे पीछे लगेंगे ईमान वाली हालत में। जैसे जाहिर हालत में तुम्हारे पास दौलत होती है, डकैती तुम्हारे पीछे, अगवा वाले तुम्हारे पीछे, हसद वाले तुम्हारे पीछे, होते नहीं होते। ऐसे बाकी दौलत में शैतान तुम्हारे पीछे, नफ्स तुम्हारे पीछे, शैतान के हमले, वसवसे, हाँ जी, डरावनी ख्वाबें, हाँ जी, परेशानियां हर वक्त, हाँ जी, वसवास खन्नास था। तो इन चीज़ों का मुकाबला करना पड़ता है। बाकी अब नसीब हम किस हालत में मरते नहीं मरते, अल्लाह जाने। तुम बीमार अस्पताल जाते हो, दवाई पतें शफा होती है, उधर से कब्रिस्तान जाता, अल्लाह ही जाने। हाँ, लेकिन कुछ करना पड़ता है इंसान को, अल्लाह ने अकल दी। तो अकल दी करें कहते नहीं, पते जन्नत में जाते हैं, जहन्नम में जाते हैं तो पता नहीं। लेकिन कुछ अलामतें होती हैं कि इंसान की अगर झुकाव जिस तरफ ज्यादा उधर ही गिरता है। अगर तुम्हारा झुकाव ईमान की हाल की तरफ, हर वक्त नमाज की फिक्र लगी हुई है, हर वक्त दुरुस्ती की फिक्र लगी हुई है, हर वक्त तौबा की फिक्र लगी हुई है, हर वक्त आयतुल कुर्सी की फिक्र लगी हुई है, जैसे इसको थोड़ी बहुत अब लगी, लग गई थोड़ी फिक्र, लेकिन इतनी नहीं लगी, थोड़ी सी लगी। कल खत लिखा, एक तरह से मुझे खुशी में कोई फिक्र तुझे लग गई, ऐसी फिक्र थी तुझे पहले, ये भी शुक्र कर इतनी दिल में आ गई कि ऐसे होना चाहिए। ये फिक्र तो हर वक्त लगी हुई, हाँ जी, कोई गुनाह ना हो जाए, गुनाह हो जाए मैं तौबा कर लूँ, मैं किसी को मार ना खा जाऊँ, मेरे माँ बाप नाराज ना हो जाए, मेरी माँ मुझसे नाराज रहती है, मैंने फलाने का माल खाया तो उसका वापस कर दूँ, हाँ जी, मेरी नमाजें कोई होती कोई नहीं होती हैं, अक्सर जमात से नहीं होती हैं। रसूल पाक कहते हैं कि घरों को मैं आग लगा दूं जो जमात से नमाज नहीं पढ़ते। मेरा तो जुर्म नमाज छोड़ने का या घर में पढ़ने का, नमाज है तो मेरी अपनी मर्जी की नमाज है, खुदा और नबी की मर्जी वाली नमाज सुनी, उसको यही फिक्र लगा रहता है, तो समझो ईमान पर ही मरेगा। अक्सर ऐसा था, उसको अक्सर ये फिक्र लगी हुई, ईमान वाले कामों की ज्यादा फिक्र, नमाज की ज्यादा फिक्र है, दूसरी की ज्यादा फिक्र है। क्या आका जी कहते हैं, मेरे करीब ज्यादा वो होगा इसका दुरूद ज्यादा होगा, ये तुम्हारी मर्जी है जो मोहब्बत कर। अब उसको हर वक्त कहते हैं वक्त बचाऊं, ज्यादा दुरूद पढ़ू, मैं आकर समझाता हूँ कि करीब हो जाऊं, मुझे उनका दीदार हो जाए, मैं मरूं तो मैं उनके कुर्ब में मरूं, उसको ये फिक्र है। उसको मौत की फिक्र है, खुदा का खौफ है, पता किस में किस हालत में जाऊँगा, मेरे कब्र में क्या हाल होगा। आका जी कहते कब्र जन्नत का बाग बनती है, जहन्नम का गड़ा बनती है, पता मेरे वहां जहन्नम का गड़ा बनेगी या बाग बनेगी, उस पर तो फिक्र लगी। और हर वक्त तौबा इस्तिगफार मस्जिद के पीछे भागता रहता है। आकर के राय तुम रद्द मस्जिद, इसके देखो मस्जिद का पीछा नहीं छोड़ता, तो समझो कि ये ईमान वाला, फशहदु लहू बिल ईमान, गवाही दो ईमान वाला। और कहा ईमान वाला मस्जिद में आता था, मछली पानी का निकलने को दिल नहीं करता मछली का, और मुनाफिक कैसे मस्जिद में जाए तो कहते जल्दी देखो उसका दिल नहीं लगता। ये अलामते हैं, अगर उसका झुकाव ज्यादा ईमान की हालत में है, इसी अमाल की फिक्र रहती सुबह से शाम तक, आज का दिन गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं दूसरी ज्यादा पढ़ा, नमाजें जमात से हो गई, चलो खाना पीना थोड़ा बहुत मिल गया, कैंटीन में कोई बात नहीं, लेकिन आज गुनाह भी करूंगा, कल मैंने गुनाह किया था, सफल जिना की थी, असफल शराब की थी, माँ बाप को सताया था, आज माँ भी खुश है, बाप भी खुश है, आज बढ़िया, ऐसी फिक्र है तो समझो कि इसका खात्मा ईमान की अक्सर ऐसे। अगर ऐसी फिक्र नहीं, भाई नमाज बाद में पढ़ेंगे, उधर मेरा फलाना कारोबार है, मेरी फलानी चीज़ है, मेरा फलाना दोस्त है, फलानी पिकनिक है, फलाना खिलाड़ी है, और फलाना चैंपियन है, और फलाना गुल्लूकार है, अदाकार है, तो जल्दी जाओ मैं यहाँ दोस्तों के साथ इकट्ठा हूँ, ये फिक्र नहीं है। नमाजें गई गई, दुरूद पढ़ा ना पढ़ा, जी कोई फिक्र नहीं। तो ये हो सकता है या गफलत की हालत में मरे, या बेनमाजी होकर मरे, या गुनाह करके मरे, या शराब पीता मरे, या जिना करता मरे, ऐसे होता है, उसकी अक्सर मामले ऐसे। तो जाहिर मामले से भी कुछ इंसान अलामतें खुदा ने रखी, बाकी फैसला कुन आदमी बात नहीं कर सकते किस हालत में जाए, कि कभी भी ऐसा भी हो जाता है, डरना चाहिए। आका जी की सारी उम्र अच्छी अमल की है, आखिर में उसका दिल हट जाता, वो बुरे आमाल करके जहन्नम में चला जाता, मौत के करीब, अपने जन्नत में जाना था एक बालिश थी, हदीस में ऐसे, उसका दिल हट जाता, नमाज से हट गया, दूसरा चीज हट गया, उसने गलत काम, खुदा गलत जहन्नम में चला। एक सारी उम्र आपने बुरे काम किए, अब उसका जहन्नम फरमा इतना फर्क था एक बालिश में, उसका दिल हट के बोले मुझे तौबा ही करनी चाहिए, क्या मुसीबत है, सारी उम्र मैंने गवाया। उसने एकदम बुरे काम छोड़ दिए, शराब छोड़ दी और माँ बाप को सताना छोड़ दिया, जिनसे लड़ा मरा था जातन से जैसे माफियाँ, तौबा मांगा, खुदा के लिए माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे जाती थी परेशानी में, तौबा में मेरा जन्नत ही चला। ये हालात का तो पता नहीं, लेकिन हर कोई चाहता है मेरे हर मैं घर अच्छा मिले, मकान अच्छा मिले, दुकान अच्छी मिले, कपड़े अच्छे मिले, ऐसे खुदा के हमको मौत कब्र भी अच्छी मिले, रहमत वाली मिले, अजाब वाली मिले, यहाँ तो फिर भी तुम्हारा आगे पीछे कोई रिश्तेदार कोई दूर ताल्लुकात काम आएंगे, वहाँ तो मसला बंद है कब्र में खड़ा, अब तुम और तुम्हारे अमल हैं, तो फिर उधर का भी कुछ सोचना चाहिए और इस चीज़ का यकीन हमको बहुत होना चाहिए। इसी चीज़ का दर्द हमको हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने दिया और उसका इलाज भी बताया कि अक्सर जिक्र हाजिम लज्जात, मौत को बहुत याद करो, याद में याद करके फिक्र रही मैं इधर लगा इधर भी तो सोचना, इधर भी तो मैंने जाना कि मैं भूल गया हूँ, फिर वो दुनिया के काम तो करेगा साथ साथ अपने ईमान वाले काम नहीं छोड़ेगा, कहेगा ये तो बहुत ज़रूरी है, दुनिया का काम रह जाएगा रह गया तो आखिरत वाला काम नहीं छोड़ेगा, अगर भूल गया ना तो ईमान वाले काम छोड़ेगा, बल्कि दुनिया के कर लूँगा तो फिर बगैर तौबा के मेरा ख्याल मरेगा। इसलिए इससे निकलने के लिए भी इंसान को कुछ ताकत चाहिए ना, आप कोई काम करें तो उसके लिए ताकत चाहिए, आपकी जान सेहतमंद है तो आप कुछ काम करेंगे, बीमारी है और लागर नहीं करेंगे तो खुराक वगैरह अच्छी होगी, काम दुनिया के करेंगे जान के लिहाज से और ईमान के लिहाज से, जिक्र अज़कार तुम्हारा जबरदस्त तेज होगा तो कमजोरी जाएगी, नस शैतान गालिब नहीं होंगे, तुमसे ईमान के काम ज्यादा होंगे, तो जिक्र अज़कार ज्यादा करते ना उनसे ईमान के काम ज्यादा होंगे, जो जिक्र कार ज्यादा करते हैं उससे गुनाह भी कम होते हैं, गुनाह हो जाए भी उसका दिल नरम होता है, खौफ आता रहता है मैंने ऐसा काम किया, मैंने ऐसा काम किया, तौबा करता रोता रहता है जान कि मेरी जान छूट जाए तो अच्छा है। और जिक्र जो अजकार नहीं करते वो अक्सर गुनाह करते, गुनाह करने की कोशिश करते और तौबा भी नसीब नहीं होती, जो जिक्र कार ज्यादा करते हैं उससे गुनाह कम होते हैं और जो हो जाए तो पछताते रहते हैं, जिक्र कार की ये चीज बताती है, वरना हर चीज का सबब होता है ना, जिक्र अज़कार नहीं छोड़ते हैं उनसे गुनाह कम होते, जो होते भी हैं वो शैतान बड़ी मुश्किल से कराता है, जल्दी नहीं करा सकता, जिक्र अज़कार करते हैं तो कमजोर नहीं होता, सोचता रहता करूँ ना करूँ, कहीं किस्मत से फंस गया हो गया है जी, लेकिन जिक्र अज़कार नहीं करते ना शैतान सारे काम, कत्ल भी करा, खून भी करा, शराब भी पिला, माँ बाप को भी रुलवा रुलवा, सारे काम करते हैं, देखो जेलें भरी नहीं जा रही, उनसे पूछो जिक्र अज़कार कर बच्चे जी जिक्र अज़कार करते होते तो हम अल्लाह की रहमत में बैठे होते, हम जेलों में 10 साल 20 साल और कोड़े और मुशक्कत और कितम कितम की मुसीबतें, जिक्र अज़कार होते जी हालत हमारी ना, वो भी समझते जी एक मेरे पास आया हो जिक्र अज़कार पर उसकी हालत बड़ी बुरी थी, न नमाज न रोजा, मुसीबतें, रिजक की तंगी, जिक्र अज़कार सुनकर उसको रिजक भी अच्छा हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, मन का परहेज कर, दोस्तों को भी उसने छोड़ दिया, बुरों का दोस्त लगाते ना जन्नत जाना, ये काम सारे सिखाते हैं, कहा माँ बाप को नहीं सिखाते, माँ बाप बुरे भी हो तो औलाद को बुरा काम नहीं करने देते, ये दोस्त सिखाते हैं, क्योंकि दोस्त भी आते हैं, मतलब दोस्तों को भी छोड़ दो परहेज करो, नौजवान को मान गया बेचार चला तो उसका जिदक उदक चल गया, रजीफे रजीफे पढ़ने लग गया, कुछ काम भी उसको अच्छा मिल गया, आता जाता फिर कुछ अच्छा हुआ गायब हो पता ही नहीं, फिर काफी अर्से के बाद एक छुपका हुआ रंग बदला हुआ, आंखें अंदर गई, क्या तुझे बोलता जी मुझ पर फिर शैतान सवार हो गया, बड़ी मुसीबत आई, फिर आपके पास आया शैतान उतर गया था, मेरी हालत अच्छी हो गई, रिजक घर में भी रहता बैठा था, माँ बाप भी खुश थे, पहचान इजाजत देखे काम कर, इजाजत से नहीं फिर बोलता था मैं जो आया मैं कहा इधर आओ रहमत आते खुदा की रिजा करा मैं पढ़ वजीफे में सबको वजीफे देने शुरू कर, वो तो अच्छा चला, तो उसके बाद मुझे दोस्त मिल गया, रिजल्ट भी वसी हो गया, फिर मैं दोस्तों में मिलते मिलते वजीफों के नावे होते गए, फिर वजीफे मेरे छूट गए, फिर मैं पहले की तरह हो गया, फिर मैंने एक बड़ा जुर्म किया, उस जुर्म में मैं पकड़ा गया, मुझे पकड़ के ले गया हुकूमत, मुझे जेल में डाला, फिर मुझे मारा कूटा वहां, फिर वहां मैंने सोचा मैंने कहा मैं पहले भी खराब था, मैं अल्लाह का नाम लिया, नमाज शुक्रिया खुदा ने बचाया मुझे, तो मैं फिर नमाज शुरू कर दूँ अल्लाह का नाम लो, अब मुझे फिर अल्लाह याद आया, जेल में अल्लाह याद आ गया, बच्चा मैं क्या वजू करना, वजू करने गया, पुलिस वाला पीछे से मुझे ऐसे खींचा, तो क्या कर रहा है? मैं क्या नमाज पढ़ रहा हूँ, वजू कर, कैसा नमाज पढ़ रहा है। एक और मुझे लात मारी, खींचा और उधर गिराया। बोला था खबीस के बच्चे नमाज में नहीं पढ़ रहे थे, तो वो भी खबीस का बच्चा होगा, तो खबीस का ही होगा, खबीस को खबीस ही मिलते हैं। बोलता जी इसमें तो कुछ नहीं। मन के पास क्या कहते सर? बोला उससे कहा तू नमाज पढ़ता था तो हमारे पास आता, तुझे नमाज याद आ गया। मैंने कहा ये तो फीस वाला कोई अच्छा सबक दिया। बोलता जी मुझे बड़ा मारता रहा, मारता रहा, मुझे वजीफे दोबारा देखो तो जी तो पढ़ लो ना जाने। बोलता जी इतना मारा मुझे खुदा की कसम वजीफे बुला दो, जो याद थे वो भी याद है। फिर दोबारा सो रहा है। बताओ इन चीजों से कितनी मुसीबतों से छुड़ा है। अब भी बातें लगे थी कि बड़ी हालत सऊदीया में अच्छी हो गई, इतने परेशान थे उनके माँ बाप की शादी नहीं करनी है, मालदार से कहते थे माल की बर्बाद कर रहे। लेकिन तरीका है ना, मार कुटाई नसीहत अच्छी होती है, लेकिन जो असल इंसान का दिल है ये ठीक ना होना, जाहिर तौर से इंसान दब जाता है लेकिन दिल से मर्द निकली फिर वो मर्द अंदर उबरती फिर वही काम करता है। अंदर छुप ही होती दिल मुसीबत है। आपने डांटा लड़के को, चुप हो गया, पुलिस ने मारा कुटा, थोड़ा जुर्म नहीं करेगा, लेकिन अंदर वो बैठा हुआ चोर, दिल साफ नहीं है, उसके अंदर से प्रेशर होना चाहिए, अंदर से धुलाई होनी चाहिए जी, वो बाहर नहीं आएगा। लेकिन नौजवान पास बोला मेरे बाप कितना मुझे मारता था, काम नहीं करना, मैं कुछ दिन रुक जाता था, दिल में कह जो मर्जी कर, जब मौका मिलेगा करूंगा। दिल सफा नहीं होता है, इससे जिक्र से दिल सफा, अंदर से इलाज होता है, इंसान सच्ची का ठीक हो जाता है, बहुत कम होते हैं। शैतान इंसान पे गालिब है, नफ्स गालिब है, इसका असर अंदर जाता है जी। शैतान कमजोर होता है, आके बस से बिगाड़ता है, जो अहले कश देखते हैं शैतान को करंट लगती है, दूर गिरता है, लेकिन दिल के अंदर एक ताकत है जो उसको करंट मारती रहती है, दिल के अंदर असर चला जाए। और जिसके अंदर विचारों के जिक्रकार के मसले नहीं है, वो बड़े परेशान होते हैं, बाद इतना अपना इलाज बगैर दवा के करते, इसका कुछ इलाज भी तो होता है। हम खुदा की कसम ये काम नहीं करेंगे, हमने करते ही काम होता है। या उनके माँ बाप ना समझ होते हैं तो और गुनाह करते हैं, इधर आ कुरान पे हाथ रख, आइंदा तो गलत हरकत नहीं करेगा मोहल्ले में, तुम हमको बदनाम करते। अब कुरान से तुम्हें हाथ लगा दिया, सौ जवान को कसम दिला दी सरकार, अब उसने फिर किया तो गबर गजब है, गुनाह का कुरान का, ऐसे नहीं करना चाहिए। उसका इलाज है जिक्र कार में लगाना, कुछ समझाना कि अंजाम फिर ऐसे होंगे, थोड़ा वो कर ले, फिर वो करेगा, उसका दिल अंदर से ठीक होगा तो बाहर से भी ठीक होगा। तो मतलब समझाना था कि जिक्र कार आप भी ना छोड़ें और औलादों को नसीहत वगैरह करें, डांटें थोड़ा बहुत, लेकिन कोई इस चीज़ को भी दवाई भी देते रहे। खुद तस्वीर पर आ जाए बेटा, दूसरी की तस्वीर पर ला 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 पढ़ आते डाले, ये छोटे में आते पढ़ते हैं, फिर वो काफी अच्छे हो जाएंगे, कुछ तुम्हारी नसीहत भी कबूल करेंगे, कुछ डांट से भी ठीक हो जाएंगे, कुछ अंदर से भी वो ठीक है कबूल करेंगे। अगर अंदर से उनका दिल बिगड़ा हुआ तुम कत्ल भी कर दोगे, वो काम जाके करेंगे, इसका दिल भी ठीक है। तो साथ दिल को भी ठीक करना, फिर ऊपर से भी ठीक करना। तो जिक्र अज़कार का मसला बहुत जरूरी है जी। तो सौ ला इलाहा इल्लल्लाह रख लो, सौ अल्लाह अल्लाह, सौ अस्तग़फ़िरुल्लाह, सौ दुरूशी, तीन आयत उसी का, इसमें इजाफा करते रहो, फिर आते जाते और दुआएं देंगे। हाँ अब सारी चीज़ें महीनों का सबक दिनों में तो नहीं दिया जाता, नहीं घंटे में तो नहीं दिया जाता, तो आस्ते आस्ते होता है। अगर तुम्हारे दिल में आ गया नहीं मैं जैसे अपनी सेहत का ख्याल करता हूँ, जान का से ईमान का भी ख्याल करूँगा, बाद में दुआएं भी ले लूँगा, जैसे तुम्हारे खाने पीने का निज़ाम है, ऐसे जिक्र भी एक निज़ाम है, परहेजें दवाइयाँ इलाज की, वो भी फिर साथ आस्ते आस्ते होना चाहिए ना। हाँ एकदम तो सब बताना ठीक भी नहीं, बोझ हो जाता है, तो कम से कम इतना शुरू कर दो। हाँ और इसको नागा नहीं करना, जैसे आप खाने को नागा करें आपका जान का नुकसान होगा, सही है ना, खाना पीना नहीं छोड़ सकते मेरे, ऐसे जिक्र अज़कार को छोड़ेंगे आपका ईमान का नुकसान होगा, ईमान कमजोरी में जाएगा, तो फिर ऐसी चीज तो नहीं छोड़ सकते ना। हम कहते खाना पीना नहीं छोड़ सकते, लेकिन ईमान ईमान वाले काम छोड़ सकते, फिर अजाब आते हैं। सर में पढ़ने जाते दिल पाक होता रहता है, अखंड से दिल को जंग लग जाता है, हमें कहता है ला इलाहा के पढ़ने से, कुरान के पढ़ने से, आयत-ए-कुरसी कुरान कुरान है, इससे दिल जंग नहीं सकता। तो इंसान कहते मैं दुश्मन जाऊँ समय पर हावी ना, दुश्मन से बच जाऊँ, तुम्हारी माल का दुश्मन है, जान का दुश्मन है, इसका नुकसान वक्ती इतना नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे ईमान का दुश्मन है वो शैतान है, इसको कोई मिसाइल या छुरी या तुम बंदूक ही मार सकते या फिर कुर्सी पड़ोगे से तो ये फिर भागता रहेगा तुम्हारे से दूर, जहां फिर कुर्सी छोड़े तुम्हारे पीछे लग जाएगा। और ये भी शैतान ने खुद अपना एक जगह फंस गया होगा तो उसने आकर कुर्सी का बताया तो आका जी का है तो सच्चा कि आकर कुर्सी पढ़ने से भाग जाता है तो वो झूठा, लेकिन ये बात उसने सच्ची कही। क्यों आकर एक सहाबी को किसी माल पर रखा होता कई माल के जकार की ऐसा माल था इस पर तुमको चौकीदार बना सहाबी आका जी पहरेदार थे। तो देखे एक बूढ़ा आया हाँ जी कि चोरी करने लगा, इसका मफहूम हदीस था, आप उसको पकड़ बोल रहा ये क्या कर रहा है, बोला जी माफ कर दो मैं गरीब आदमी हूँ, इंसान के हालात आ जाते हैं जो मफहूम होते हैं, इंसान मजबूर हो जाता है, आप कर्म करें बड़ी जाली की मैं छोड़ दी। आका जी को सब पता था, सुबह आका जी के पास आका जी का वो रात को कौन आया था, बोला बूढ़ा आया था ऐसे उन्होंने पकड़ा फिर उससे माफी मांगी थी, अब तो शैतान था झूठा था, वो कल फिर आएगा फिर आएगा वो फिर दूसरे दिन ऐसे फिर वो आ गया, फिर वो चोर जो है पकड़ लिया आपने, तो पकड़ लिया उसको फिर माफी मांगो फिर आप तो तुझे नहीं छोड़ उसे कुछ तरस खा मैंने अपनी हालत पर रहम कर बड़ी जाली की फिर छोड़ दिया। आका जी कह उसे बड़ी आपने कहा वो झूठा शैतान और फिर आ गया, फिर तीसरे दिन फिर आ गया फिर पकड़ उसने बड़ा कुछ कहा अब तो तुझे पुचा के छोड़ूंगा आका जी की बात अब तुम छोड़ उसने कहा अच्छा मैं तुझे एक फायदे वाली बात बताता हूँ बहुत बड़ा फायदा वो तो उसकी वजह चूंकि क्या फायदा क्योंकि जो आयतल कुर्सी पढ़ लेना शैतान से उससे भाग जा से करीब नहीं आता और मैं शैतान जितना बड़ा फायदा बता रहा अपने पर खुद मुसीबत ला रहा फिर मैं छोड़ दिया। फिर आका जी को मैं कहा आया था कहा पकड़ लिया बड़ा उससे मुझे ये बात बताई तो आका जी का ये बात उसने सही कही है बजट ये आयतल कुर्सी को नहीं जिसमें और बड़े फायदे हैं आपको कहीं खौफ खतरा है कहीं हंगामा है मुसीबत है या कुछ होना चाहेंगे आप दिन में आते सोचे तीन दफा पढ़ रहे आप रात को सोते हैं आपको डर है जी कि कोई इधर खौफ खतरा ना हो या घर में कुछ ऐसे असरात होते हैं जी घर से निकलते भी आते कुर्सी पढ़ लियो रात को सोते वक्त आते कुर्सी तीन दफा पढ़ लिया फिर ऐसे फूक फूक दिया आगे दायरा कह वाला जब वाला तीन दफा कह रहे तीन दफा आते कुर्सी पढ़ तीन दफा आते कुर्सी और जब पढ़े वाला या उनको हिजों और अलियों ने ये तीन दफा कह दिया कर फिर मुझे भी फूक फिर ऐसे करते शैतान आज ही बात कि चारों फूल आयतल कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए ये जादू काला इलम शैतान जो वजीफा बना इसका खास असर रूह में हो जाता उस आदमी पर चीजें ज्यादा असर नहीं करती अगर असर भी करे शैतान जोर लगाए जादू वाले जोर लगाए वो वक्ती तौर से असर होता फिर वो असर जायल हो जाता है जिसका वजीफा हो और बच्चों पर भी दम किया करें साया वगैरह ये और चीजें ऐसी बड़ी नेमते आका जी आखिर का भी नेकी का भी कुरान भी है पढ़ना हो गया एक नेकी एक लफ़्ज़ के दस नेकी भी तो कुछ इसमें भी लग जाए थोड़ा सा बाजू होते कितने होते हैं आजकल कुछ ही नहीं आते आने की चीजें छोड़नी नहीं चाहिए खुदा तौफीक दे अल्लाह तौफीक अल्लाह दिल लगा जी हम इन फायदों को सुनते भी नज़रअंदाज कर देते हैं हमको ये चीज़ें अच्छी अच्छी नहीं कि बुरी लगती हैं बस तवज्जो नहीं होती ये बात की चीज़ें पहले मकान दुकान पैसा खूब इकट्ठा करो ये चीज़ें ईमान वाली ना ना तो पैसा भी अजाब वाला घर भी अजाब वाला औलाद भी अजाब वाली हो जाती है शैतानियाँ करना पता नहीं क्या क्या करना उसका बाप की दर है इसकी जमानत दौलत संभालना औलाद नौकरी अजाब वाली हसद ये मुसीबत हराम हलाल खाना सूद के पैसे खाना फिर उससे पता ऐसी बीमारियां लगती शफा नहीं होती जब मैं सच्ची बात कहता हूँ शफा नहीं होती बड़े पैसे खर्च करने पड़ते हैं और दिल फिर इबादत नहीं लगता हराम खा खा के नहीं लगता औलाद तक असर पहुंचता है नुस्खे तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती एक सहाबी ने कहा अल्लाह से दुआ कीजिए मैं कुछ दुआएं मांगू अल्लाह कबूल करे कहा अतिब मकसद तो जिब दावत तू रोजी हलाल की खा दुआ कबूल हो जाए जिक्रकार से फिर इंसान ऐसे ही करता है काका उसका दिल मानता ना चला जाता तो जिक्रकार ही नहीं करता है उसका हराम खाने को दिल करता है गालियां देने को दिल करता है हर चीज बलाएं करता है जो शैतानी काम उसकी रगबत में हो जाता है फिर शैतान उसको छोड़ के चला जाता है ये मैं कसम खा सकता हूँ शैतान उसके साथ नहीं होता शैतान उसके साथ नहीं होता शैतान उसके पीछे रखकर जो नमाज शुरू कर दे तौबा शुरू कर दे अस्तग़फ़िरुल्लाह शुरू कर दे दुरूद शुरू कर दे कहता है इसके पीछे लगो उसको वसवसे मुसीबतें बेचारे को ख्यालात, दुनिया के पास ये नहीं है तेरे वो नहीं है, उल्टे सीधे ख्याल, बाद ऐसे ख्याल बातों को आते हो कहते काफर होकर ना मतलब। फिर शैतान कहते हैं जब से तुम दिक्कत दूषी किया ना ये नमाज जिंदा से मुसीबत आई है सामने, पहले से कुछ नहीं था आराम से सोता था, रात को सोते सोते डर जाता, हाँ जी को शैतान आता है शिकले दिखाता कौन है, और जो नहीं पढ़ता उनको शिकले विकले कुछ नहीं दिखाता, ना उनके पीछे खड़ा होता है शिकले बना के उसको खौफ महसूस होता, जाहिर भी ऐसे आ जाता है बादशाह नहीं के जाहिर आ जाता है, माँ बाप बन के आ जाता है, तेरी माँ को कतल कर रहा है, जिक्र कर ना कर तेरी माँ को कतल ना कर, तो देख जानना में तेरी माँ पढ़ लगी, ऐसे हालात को दिखाता रहता है, ईमान वाला मौत के वक्त आ जाता है बाप बन के, बस मैं यहूदी आखिर यहूदी होकर मरा था जन्नत में चला जाता है यहूदी बन गया, ईमान हो गया था सर, फिर माँ बन गया था नाना मैं तेरी माँ में जब मरने लगी थी मैं नसरानी बन गई थी ईसाई का मैं जन्नत में चले गई, हर किस्म के हमने बताते ये चीजों का एहतियात करना चाहिए, अल्लाह का जी मान तो खाता हूँ इन चीजों को छोड़ना नहीं चाहिए, हमारे आका जी ने कहा कि इंसान कलमा पढ़ता है तो दिल पाक होता है मरते हुए कलमा नसीब होता है, फरमाया ये हदीस तो नहीं है, हदीस हमारे बाद मशाइख को आका जी ने बताया था, कहते हैं कैसे दिल पाक होता है कलमा नसीब होता है, आका जी ने कहा हमारे बाद मशाइख और ज्यादा दूर जो पढ़ते हैं तो उसको आका जी का मौत का दीदार भी नसीब हो जाता है, बचा लेते हैं, इन चीजों को नहीं छोड़ रहे, और जो 1000 दूर रोज ना छोड़े बाद हदीसों में आया वो नहीं मरेगा जब तक अल्लाह ने उसको जन्नत का मकान नहीं दिखा दे, कहां तेरा रहना, चलते फिरते क्या नुकसान है पड़ता है, देखिए इस पर तुम पे हमले बड़े हो गए, कहते सब बहुत दूर से पढ़ता था उसके इतने हमले हुए, लेकिन आप जिसके रुख करते हैं वो कभी अपनी सूरत भी दिखा दे, हमारे मशाइख से इतने हमले होते थे बेचारे तो उसने कहा आज तो मेरे मामा दूर से बहुत पड़ता था, जितने हमले हुए उसने कहा सिर्फ दीवार में मरूं मर जाऊं क्या करूं, जिंदगी से इस वक्त बेजार हो, लेकिन उसने कहा कुछ हो जाए आखिर दम तक मैं नेकी में कोशिश करता रहूंगा, जितना भी शैतान हमले करे नहीं छोड़ूंगा, उसका दिल ऐसा मजबूत हुआ था, हमारे मशाइख होते हिजाबात हटे सब चीज गायब हो गई, सिर्फ ना समझ अब अल्लाह तो देखा आका जी के पास बैठा और आका जी नमाज पढ़ रहे थे, तरीकी मोहब्बत में मुसीबतें भी आ जाती है, शैतान के हमले होते हैं, बाकी जाहरे हमले होते हैं, दुनिया से मुकाबला करना पड़ता है, हाजी हराम हलाल में देखना पड़ता है, दुनिया ताने मारती है ये सूफी बन गया है, पहले ये बदमाश था या पहले फलानी लड़की से इसकी दोस्ती थी, मैं जानता हूँ उस खबीज को भाई तोबा करता है अल्लाह पकड़ देता है, हाँ अब ये हम ये फलाना है, दुनिया नहीं छोड़ती, अगर पक्का होता है ना तो मजबूत हो जाता, ये कच्चा होता है तो छोड़ दे, कहते जैसे जैसे बोलते हैं जिन्हें शर्म मानते हैं, इसको बोलते हैं उठली खा के बिल्ली हज को चली, अरे क्या क्या करता रहा, अब तस्बीह और नमाजें शुरू की, फिर नमाज छोड़ दी या सुस्ती से ऐसा नहीं करता, और बाकी हमने शैतान का भी इतना दबाव उस पर डालता उसको नमाज के लिए नहीं उठने देता, जिसम टूटता जाता तो इतना दबाव डालता उसके सिर पर, हमारे मशाइख बताते थे इतना सिर भारी होता कुछ पढ़ नहीं सकता है, फिर आते कुछ नहीं पढ़ता मुकाबला करता, फिर निकलते निकलते काफी निकल जाता है, फिर खुदा हमारे मशाइख को जन्नत दिखाता है जहन्नम दिखाता है अल्लाह की तजल्लियात दिखाता है, एक सफर से बड़ा कुछ करना पड़ता है, इसको मोटी मोटी बातें बताते हैं, ये आसान नहीं तुम जिक्र कार कर दो, कच्चा वच्चा रह रहा है शैतान पीछा नहीं करेगा, उसको पता है टेम्परेरी है नकली असली नहीं है, ये थोड़ा करेगा तुमको कोई तकलीफ नहीं, जैसे देखा दिल से लग गया ये खुदा की रहमत में चला जाएगा, खुदा की रहमत खास नजर पर हो जाएगी, ये ईमान का तो उस वक्त तुमको बहुत परेशान लोगों से लड़वा देगा, जिनके दिल में कुछ डालेगा कुछ करेगा, हाँ बड़ी छोटी घर, तो तुम अगर पक्के हो ना और तुम्हारा ईमान पक्का, तुम बाज औरतें बाज मतलब जी जिक्र कार से नुकसान हो जाता है बाज बकर ऐसी बातें करना ईमान के खिलाफ, जैसे कुमार कुरान शरीफ पढ़ बोलता जी मैंने एक दफा शुरू किया था उस दिन मेरी टक्कर हो गई थी मैं जेल में चला गया था, मैं कुरान पढ़ते डरता नहीं बातें कुफर की अच्छी तो नहीं, ऐसे लोग बाद नमाज नहीं पढ़ती, हमने ऐसे देखे जी जिद्दे में भी ऐसे बाद पाकिस्तानी कुरान कहते हैं जी जो नमाज रोजा ज्यादा पढ़ते उनके पास दौलत नहीं होती फकर आता है, कितने नमाजी करोड़पति हैं और कितने नमाज नहीं पढ़ते भूखे मरते हैं जी, ऐसी बातें लोगों को। तो वो कहते नमाज नहीं पढ़ता था, औरत पढ़ती थी से लड़ता था, नमाज से मना करता था, कहते थे ज्यादा नमाज से फकर आता था, जो नमाज नहीं पढ़ते उसके बाद दौलत ऐसी चीजों से बचाए। बेहरा जिसका ईमान होता है कलमा दिल से पढ़ा, वो तो आका जी की बात सुन के इन चीजों को तो नहीं माना, चाहे कुछ भी तो लगे ही रहता। तो खुदा कर जी नमाज पढ़ते पढ़ते दूध पढ़ते तौबा करते करते मौत आया, खुदा कर जी हाँ जाना तुम लोगों नहीं है, खुदा कर अच्छी हालत नहीं है, उस वक्त कोई साथ नहीं देता है, ना घर वाले ना दूसरे, दे भी नहीं सकते ना बेचारा, कौन तुम्हारी कब्र में घुसे सांस घूट के अपना मारे हैं, रो लेगा बेचारा दुआ कर देगा उसकी बस की बात नहीं है। हाँ अब तेरा रब्ता अगर खुदा रसूल से यहाँ रहा है, तेरे लिए हर नेमत हर खैर में असर। हमारे मशाइख बताए कि आज की तफसील में असर बताया कि इंसान कब्र में अगर आमाल अच्छे हैं उसको अच्छी अच्छी सूरतें दिखती हैं, खुश हो तुम कौन हो, कहते मैं तेरी नमाज हूँ, फिर कौन में तेरा नफल हूँ, फिर कौन में तेरा दरूद हूँ, मानूस हो जाता है, फिर जितनी वसत उसकी नजर होती वहां तक कब्र वसी कर दी जाती है। जो अमाल खराब है उसके अमाल सूरतों में आ जाते हैं, वहां बड़ा घबराता है, उससे डर लगता है, तू कौन है, तौबा नहीं की होती है, कहते जिना नहीं किया था, मैं तेरा जिना हूँ तेरे पास आया, इसी तरह से डरता है कौन, कि मैं शराब हूँ, शराब नहीं पीता था, फलाना काम नहीं किया था, तो चीखे मारता है रोता है, फिर कहते जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता, ऐसी हदीस सुनाता है। और बाजों के लिए बड़ा कर्म होता है, कहते वो जाता है कदी शरीफ में आता है, एक खूर उसके पास आते से बातें करती है जी, तो उसको ऐसे हाथ डालने लगता है, उसका हाथ गिर जाता है, वो से रुक जाते, कहते हमारा हाथ तोड़ दिया, मैं हाथ बना के दो, वो बैठता मोती जब तक सुनता क्यामत आ जाता एकदम, और जिसको अजाब होता है अजाब की घड़ी एक मिनट भी हजार साल लगता है। तो इंसान इन चीज़ों को माने, कब्र का अजाब, कब्र की रहमत जी, सब आका जी ने कहा है, उधर होता है तो आकर जी कब्र के अजाब से खुदा से पनाह मांगो, अगर ये मसला हल हो गया तो अखीर तक सारी आसानियाँ हो जाएंगी, इधर मुसीबत आई कब्र से तो अखीर तक मुसीबतें ही रहेंगी। एक शायद उसके पास एक नूरानी शिकल वाला है, बड़ा मानूस, तू कौन है, कहा तो बहुत दुरूद नहीं पड़ता था, उससे खुदा ने मुझे फरिश्ता बना दिया, मैं जन्नत तक तेरा साथ दूंगा, तुझे खुश रखूंगा। तो ये मामले दुनिया के ये आर्जी हैं, उसमें जब तक तुमने रहना है, तुमको पता नहीं बीमारी लगती है, तुमको शुगर लगती है, तुमको कैंसर होता है, किसी हादसे में जाते हो, पता है क्या क्या मुसीबत, जब तक आप मरते नहीं है आपको मुसीबतों से जान नहीं चाहिए, नियमते तो हैं लेकिन में दुख और मुसीबतें बढ़ी हैं। अगर ईमान की हम मामला ले गया, आगे जमानत, यहाँ जमानत किसी के लिए नहीं है जी, वहां दुख तकलीफें नहीं, जो चाहोगे वैसा तुम्हारे साथ हो। तो फिर ये आर्जी मुस्तकबल मुसीबत वाला, इसके पीछे इतनी मेहनत करनी है, और जो जमानत वाला मुस्तकबल खुदा उसका ख्याल ही ना करनी है, फिर पागलों वाले काम है। हम जब मुसलमान हैं तो हमको वल यौम आखिर, हमारी तुम्हारी जो दोस्ती अगर वो बन गई तो खुदा रसूल के मामले में है, तो इसमें तो दुनिया आखिर दोनों अच्छी हो जाती है। हाँ तो अल्लाह करे हो जाए, वो काड़ी ने भी दोस्ती की, उसने कॉलेज में दोस्ती की, तनख्वाह को और बैठा हुआ वो कॉलेज का, हम मरने के करीब आया, अब कुछ सोचा है कि ये मैंने इतनी मेहनत जो की, इतनी मेहनत तो इधर करनी थी, इधर थोड़ी बहुत कर ली थी, पेट बहुत बड़ा ना उसका, कारून की तरह इसका पेट बड़ा हो, उसको बड़े अजाब मिलते हैं जी, हाँ बड़े अजाब मिलते हैं। आका जी कहते पेट से शरीर बर्तन खुदा ने पैदा नहीं किया, हाँ पेट बड़ा कैसे लगे, हिर से उसको, शायद का पेट छोटा है, हिर से बहुत बड़ा पेट है, अभी देखो पेट नजर नहीं आता, मैं कहता तेरा पेट बड़ा है, तेरा पेट बड़ा, मेरा पेट छोटा, मैं सारी उम्र मकान नहीं बनाया, मेरा पेट इतना बड़ा नहीं, सारी उम्र तनख्वाही नहीं खाई, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत से खाया, पेट छोटा है, लिल्ला पढ़ाया, लिल्ला इमामत करता रहा, अभी जो थोड़ा बहुत जमीन बनाई ये तुम लोगों के फायदे के, वजू करते हो बैठते कुछ हमारा सवाब कमा रहे, हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू, आप क्या कहते हैं, चलो सबूत पेश कर, क्या इश्क किया है, पैसे से किया तो मान ले जाए, औरत से किया शादी की तो जायज है वो भी ठीक है, या इश्क किया, एक इश्क होता है इश्क चुका तो दुनिया में उसका नाम होता है, वो कौन सा इश्क, सिर्फ मोहब्बत से रखा माँ बाप का नाम, ऐसी बातें छोटी करती हर तरह इंसान मानस हो जाता है, थोड़ा कुछ बात थोड़ी चलती इंसान जब बेचे करते फिर उसको आगे भी चलाना पड़ता है। तो मनुष्य आया ना गाड़ी वाला मनुष्य, वो हमारे पंजाबी गाँव पर पान पड़ी वक्त में पड़ी है जी, तो सारी मेरा वादा रहा मनुष्य है जी, सारी मेरा वादा रहा, कभी हुकूमत नहीं कभी पैसे के पीछे, हो सकता है कभी मटीरियल के भी पीछे हो कभी से, अभी तौबा भी शुरू नहीं की है जी, मुझे अभी अल्लाह बना कर बेदबी का खत्म हुआ था तो सारी बेद एक पैसे के पीछे इंसान है जी, वक्ती अहदा से पता है कितनी मुसीबतें कितने जवाब हैं, कितनी इंसान सारी उम्र खर्च करता तो एक वजीर का फूस उड़ाने पर वो बनना तो बड़ा मुश्किल है, वो तो तेरे खानदान में नहीं बन सकता, और आका की गुलामी कोई आसान कहते गुलामी और की है जी, अभी गुस्से नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें, कहते ऊंचा जाना है जरा होश से चलना, हर गांव में पांव फिसल जाने का डर है, बाजार से उसके बाद मामले करें जुमझे पड़े ये बातें करें उधर बेनियाजी है, ये पता है तुम्हें क्या तुझे तलवार मारी है 30 मार खान बना हुआ, तो ऐसा खत लिखा तुम्हें, मैं तो फख्र तो नहीं बोला दूसरी फखर जो कुछ बोलने की जबान दी है, मुझे किसी वकील करने की जरूरत नहीं, मैं खुद तैसे भुगतूंगा, अगर तू सोफी है तो पूछे तुझे बात कर करके ऐसी तुझे सबक दूंगा कम कब्र तक तुझे याद रहेगा, जहाँ खुदा रसूल का माँ मारा वहां जुरत नहीं कर लिया, शुक्र करके तू बागी था तुझे यहाँ यहाँ हमला है, कभी तेरे बाप में इतना दरूद पड़ा था ना, शुक्री खुदा का कहते यहाँ आता नहीं चीजें नहीं, फिर पहले अपने मकासद थे वो भी हल हो, फिर किसी तरह से यहाँ इसको लाया, फिर मान ना मान मैं तेरा मेहमान, मैं इसके पीछे फिरता हूँ मोहब्बत करता, तू तो मेरे पीछे नहीं फिरता, भाई तू आया कर भाई तू आया जोरी इसको जफ्फे डाल रहे हैं, क्या तेरे से जोरी जफ्फे डाल रहे बेशर्म है जी, ये बता रहे शिकर कर छोटे शगिर्द अच्छे थे, बड़ा शगिर्द मुसीबत है, इतने बड़ा शगिर्द रखा जी इसको सिखाने के लिए, तो उसने उसके कान पकड़ लिया उस्ताद ने गुस्से में, बड़ा शगिर्द था उसने उस्ताद के कान पकड़ लिया, तो उससे तेरा मेरे हिसाब होगा, मैंने बंदोबस्त किया थे किससे सुने, चल तो कान पकड़ लूंगा अपना कान इशारा नहीं पकड़ने लूंगा, उस शगिर्द के कान से पकड़े जी तोबा से उस्ताद के पकड़ते तू भी तोबा कर, अब एक दूसरे के कान में छोड़ो, फिर लोगों ने आके छुड़ा चाहता वो किस्सा यहाँ, ये बड़े शगिर्द की मुसब्बत है, तो इस मतलब बड़े शगिर्दों को जवाब देना चाहिए, छोटे छोटे ऐसे 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 इनको रखना चाहिए, देखो देखो अभी तेरी ला इलाहा इल्लल्लाह सही नहीं है, अभी तेरी आयत कुर्सी सही नहीं है, तेरा आना जाना सही नहीं है, जो अजमत खुदा रसूल के तकाजे होते हैं जी, खुदा रसूल का करम रहम गालिब है इंसान पर, जैसे पढ़ता है खुदा रसूल छोड़ देता है, एक कॉलेज में तुम कुछ बनना चाहते हो थोड़ा बहुत नौकरी, पहले तुमको 14 साल पढ़ाई, फिर पूरे साल वो पेपर देने, पूरे साल पाबंदियां कर दिया हैं जी सारे मामले में, फिर जाके पेपर देने, फिर दूसरा फिर तीसरा साल है जी, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि मैं ही मादा पढ़ूंगा, ये मैं ये मादा नहीं पढ़ूंगा, सारे होकर कबूल करना पड़ेगा, फिर उसने फीसें भी देनी है जी, फिर जाके कहीं वो दुनिया की हड्डी तुमको थोड़ी सी मिलेगी, और जहाँ कुर्ब खुदा कुर्ब हजरत में मां तो ला कुर्बानियां दो, कुर्बानियां की भी कोई कीमत नहीं, कौन सी कुर्बानी तुमने इतनी बड़ी दी जो इतना जबरदस्त खत्म में लिख दिया उसकी, आप इसके जिम्मेदार हैं, ये पहले तो किया ही क्या है, पहले तो सजा का मसला है जी, कितनी जो तालीम ली उसकी बेकदरी की, और पहले तेरा माजी सही नहीं गुजरा, उसके कफारे और उसके वो सारे सारे अब चुप करके बैठे ना आगे बोलना शुरू कर दो, तो सोच इतनी तस्वीर कभी पढ़ी तेरे बाप ने पढ़ी, कभी ऐसा की किया, कभी ऐसी तमन्ना पैदा जो खुदा का शुक्र ही करते, दिल में इतना एहसास पैदा हो गया मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना एहसास पैदा हो गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीम हस्ती है, मैं तुमको भूला हूँ, मुझे पता नहीं, तो इन चीजों को समझता इस पर एहसास ही नहीं जागता, और कुछ नमाजें पढ़ लेता, और फिर मैं घसीटने से यहां कुछ आया। ये इसलिए कहता हूं कि सब मेरी औलाद, ये भी मेरी औलाद। औलाद अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, नायल भी होते हैं, बेअदब भी होते हैं, अदब दसल। तो बाप किसको छोड़ तो नहीं सकता, ना मैं उनको छोड़ सकता, उनको छोड़ सकता। लेकिन ये रसवाई के लिए बात नहीं, बीच में बात करें ताकि औरों को भी फायदा हो, एक बेहुदा दूसरे बेहुदे ना हो जाए। तो औरों पर इस बात की ना ऐसे खत ही कहें, तेरी बड़ी हजामत हो गई, अब इस खत की तुम्हें माफी है। दो रकात नमाज तौबा पढ़, अल्लाह का शुक्र करके ना शुक्र की खुदा तस्बीहें ना ले ले, ये नमाज ना ले ले, तेरा आना यहाँ बंद ना हो जाए। बल्कि सा ऐसी जगह आ ही नहीं सकता, एक तस्बीह भी आदमी नहीं पढ़ सकता। बाद देखो कितनी उम्र गुजर जाती है, गूंजते में इधर उधर, अल्लाह का नाम बहुत महंगा, कितनी तस्बीहें तू पढ़ लेता है। मुझे भी शुक्रिया अदा कर जो तुझको नहीं कर दिया, मैं तो खत दे के डर गया, मुझे कितनी ना शुक्र कर सकता, कितना आजाद आदमी था, उसको कैसे लगाया हक करते हैं। अब ये एकदम कहता है मुझे खुदा तक पहुँचाओ, नबी तक पहुँचाओ, और मेरी जिम्मेदारी तुम्हारे पर पड़ गई है, तुम इसके जिम्मेदार हो, ऐसी बातें कर। ये अंदर से तौबा कर अल्लाह ताला ना शुक्री, अपना वो क्या कहते हैं काबिलियत दिखानी। हमारी तुम्हारी खुदा करके काबिलियत हो सकती है, ये तेरी काबिलियत है। कहते जितना बड़ा अकलमंद उतनी बड़ी बेवकूफ़, पढ़ा लिखा बिल्कुल जाहिल निकले, तो जाहिल अच्छे जी जी तो करते हैं। अल्लाह का शुक्र कर दीजिए जो इतनी तस्वीर पढ़ लेता है, इतनी नमाजें पढ़ लेता है, और यहाँ खुदा के फजल से आ जाता है। वरना तेरा जेल पहले ऐसे था, शैतान ऐसी बातें करो, और इंसान मुखलिस भी हो जाए तब भी खुदा उसकी हाजत में नहीं है, ऐसी हाजत में। हदीस में आता है सब कुल नास हल्का, सब लोग फिर हिलाक हो गए आका जी का, इल्लल आलिमून, मगर आलिम भी नहीं हिलाक हो गए। फिर का वल आलिमून हल्का, आलिम भी हिलाक हो गए, इल्लल आमिलून, अमल वाला हिलाक हो, जो आमिल जो अमल करेगा। फिर का वल आमिलून हल्का, जो अमल कहते हैं वो भी हिलाक होंगे, कमल में रिया वगैरह भी होती, इल्लल मुखलिसून, जो मुखलिस होगा। फिर फरमा के बल मुखलिसून अला खतर, और मुखलिस भी खतरे में, खुदा अगर बेनियाजी दिखाए तो इसकी खलासी क्या जरूरत है। भाई खुदा का मान ऐसा ना कर किसी और को डबोए। हजरत अबूबकर सिद्दीक का कितना मरतबा है जी, हाँ जी, वो कहते थे काश में पीला होता मुझे चीजें खा जाता। मिंबर रसूलुल्लाह पर खड़े हुए खुतबा दिया, आका जी कितनी मोहब्बत थी, तो पहले अपनी आजजी जाहिर की, कहा मैं मिंबर रसूल पे खड़ा हूँ, लिल्ला नसीहत करता हूँ, उसका मफहूम था। और इंसान कैसे फख्र कर सकता है, फुल कमिन बौलन, दो पेशाबों से पैदा हुआ है, माँ बाप का पेशाब मिला है तो इंसान बना है, इधर से भी मादा बुरा, उधर से मादा सही है, यकीनों को पता है मैंने बैठे बड़ी हाँ की जानते ना ऐसी बातें, कहता हाँ ये तो सही, ये तो उसको तहकीक है ना, बड़े पढ़ते रहते हैं ना। हाँ या तो अब अगर सिद्दीक मिंबर पर फरमा रहे थे, ये कितनी आजमी की बात थी, कैसे इंसान फर्क करता है, मैं चाहे मैं मिंबर खलीफा रसूल रहा हूँ, लेकिन मैं अपने को खुदा रसूल के सामने कुछ नहीं पाता, इंसान दो पेशाबों से पैदा हुआ करता। हजरत उमर का कितना दबदबा था, वफात के वक्त बेहतर कहा मेरा सिर अपनी राम सरकार तो जमीन पर रख लो, शायद खुदा मेरे पर तर्ज कर रहे सकते, खौफ खुदा नहीं होता ना, ऐसी बातें निकलती हैं। कितनी तुझे नेमत नसीब हो गई है जी, हाँ जी, और तेरा रिकॉर्ड है कितनी 30 साल से उम्र ज्यादा है ना, 30 साल तो शेव करता रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को काटता रहा, समझे, एक रिकॉर्ड है इसके पास, वो रिकॉर्ड का तो रहा है सुन्नत रसूल की, उसका भी शुक्र नहीं पता, जरूर चल रहा है ये चल, कोई जबरदस्ती चीजें होती हैं, दाढ़ी भी तुझे मिल गई, नमाज भी तुझे मिल गई, तो बस तकवा भी मिला, अब दिल में आता है खुदा का खौफ भी उतरेगा, लगा रहो अल्लाह से, बल्कि तुम शुक्रिया करते आपने साथ मेहनत की, ये कि मेरी हालत ठीक नहीं होती है, और आपको मैं डॉक्टर समझा, मेरी दुआ करें, बाकी मैं कुछ करें, और आपसे اس قسم کے لفظ دعا کر میرے حق میں اچھا ہو جاؤں, مجھے اپنی ماضی کی زندگی پر بہت ندامت, میرا ماضی اچھا نہیں گزرا, اب مجھے پتہ چلا ہے کہ خدا رسول اللہ سے منہ پھیر کر زندگی گزارنا حیوان والوں کا, وہ انسان آپ نے زندگی کا رخ میرا پھیر دیا, وسیلہ بنا, یہ شکریہ کا قدم دیا. انسان دعا کرے بھی اس کے دران دعا بھی نہ نکلے, افسوس ہے جی پڑھا پڑھتے پڑھاتے رہے گھسیٹتے رہے اس کو وہاں سے, خالد بھائی آیا کرو آپ آتے نہیں ہیں, تین تین مہینے نہیں آتے ہیں, دیکھو دوسرے تمہارے بھائی تین مارتے پتہ نہیں کہاں سے آتے, تم بھی آ جایا کرو. وہ آیا مرزا بولے کفن میں نیوز ہو گئی کہنے پھر بڑے شاگردوں کو نہ رکھیں تو مصیبت ہوگی, ہاں تو لڑائی والی بات ہے, جسے تو شکیل اچھا تھا ان پڑھ طریقے میں ان پڑھ لوگ بڑے کامیاب ہوتے ہیں, جی جی کرتے ہیں, کہتے کہ سار پڑھا رہا تھا, ایک تو میں نے کہا اس کو جواب نہیں آ پڑے ہوئے سن کی بات سے تو بیٹھا, میں نے کہا تیرا گدھے میں کیا فرق ہے, ظاہری بات ہے گدھے کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کان, گدا گھاس کھاتا میں روٹی کھاتا, بولے نہ چپی, مگر تیرے سے جاہل اچھا تھا, صاحب تیرے گدھے میں کیا فرق ہے, بولتا جی مجھے تو پتا نہیں میرے گدھے میں کیا فرق ہے, آپ ہی کو پتا ہے آپ ہی ہم کو ٹھیک کرو, یہ اس سے بھی گیا ہوا یہ حال ہے, پڑھے لکھے گا کل جو خط لکھتا ہی نہیں ہے, شکریہ کا خط لکھا, بلواتے رہتے ہیں محبت سے بٹواتے ہیں, تصویر بھی چلایا اس بھی چلایا, ساری مدد میں ایسی گواہی کون سی پر اتنی قربانیاں خدا کے رسے میں دیے راکا جی کے رسے میں, بتا مجھے جس پر تجھے اگر مان ہے اپنا فخر ہے وہ بھی, وہ بھی مجھے نظر نہیں آتی تھی, بس ہم جی ایسے آئے بعض لوگ ہیں جی چن کے لگتے ہیں شریفوں غم ہو غم کو, جیسا مل جائے سے گزار لیتے ہیں, خوشا کے جنہیں بدتمیزی کی اس کو گھر والے قبول نہ کرتے, دنیا قبول میں نے اس کو رکھا ہوا مجھے کچھ تو اچھا ہو گیا, پھر انتظار اس نے بدتمیزی کی بےچارہ کو, اس نے ماد میں لگایا کچھ ادھر لگایا کچھ چلایا اس کو, ساری دنیا سے بیزار اس کو ہم چھوڑ دیں, اچھا ہے اکا جی ایسا پسند کرتے ہیں, ایسے میں تو زیادہ ثواب ہوتا ہے, جس زیادہ حکیم ہو ایسا ڈاکٹر ہو کوئی زیادہ مریض ہو کینسر کا شکر کا بات سے زیادہ اس پر رحم زیادہ کرتا ہے, ایسے روحانی مریض ہے بیچارہ ہو کم از کم نماز میں لگ گیا تھوڑا جی دوشی میں لگ گیا, پہلے تو بالکل ہی قتل ہی ہو گئی شاید وہاں, پھر بھی اس سے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے, پھر بگا دیتے ہیں پھر لاتے ہیں پھر سزا دین کی وجہ سے بگایا ہوا, اس کو بالکل نکال دو کافر ہو کے مرے, اچھا ہے دیکھ آدمی گزرا ایک جگہ سے دیکھا کسی کو مار رہے تھے, کہا کیوں مار رہے ہو, کہا اس نے غلط کام کیا یا ایسا, انہوں نے کہا اگر گڑے میں گرتا اس کو نکالتے ہیں تو پتھروں سے مارتے, کہا نکالتے ہیں, کیسے شیطان کے ہاتھوں سے پیار کرو مارتے کیوں, آقا جی لوگوں کو نجات دینے کے لیے پتھر میں کتنے پتھر کو مارے گئے, کیا کیا ہوا آپ نے پتھر کھا کے صبر کے شہد کی اولادیں اچھی ہو گئی, تم صبر کرتے جیسے آ جائے, یہ نہ سمجھ میں ایسے کرتے بگا دو, میں نے خدا کچھ رکھا ہوا آخر مر تک وفا کروں, مجھے جیسے بھی مل جائے, بس مجھے اتنا پڑھا ہے جو پتہ چلتا ہے آقا جی کا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا محمد رسول اللہ, شرابی ہو قاتل ہو دنیا سے بیزار ہوں میں اس کو سینے سے انشاءاللہ لگا دوں اس کو چلاؤں گا, اچھا پھر دعائی کریں گے اور کچھ احتیاطیں کریں گے, ہاں احتیاطیں رکھنی پڑتی ہیں, ڈاکٹر بھی مریض رہتا تو احتیاطیں کرتے ہیں, ڈنڈے شنڈے رکھتے ہیں جیل پیچھے جب اس کا دماغ ٹھیک ہو جاتا ہے, رہیں بھی کرتے لیکن کرنا پڑتا ہے نا, جیسے کہ کمرہ بنانا پڑے گا جیسے چڑیا گھر میں, اس میں بند کرنا پڑے گا, پھر اتنی دوائیں دیں گے سلاخوں میں تو گڑبڑ کر دے گا, دماغ میں تو ڈاکٹر سلاخوں میں رکھ دیں, ٹیسٹ ویسٹ کرتے رہتے ہیں اس کے پیچھے, جب ٹھیک ہو جائے تو اس کو نکال دیں, تیرے لیے کوئی کمرہ بنانا پڑے گا, دیکھو چڑیا گھر یہاں ہے بند کرا ہوگا, باقی تمہاری بات ہوتا ہے الگ سے الگ چڑیا گھر نہیں بھیجنا پڑے گا, ہاں ڈاکٹر نے بھی بس ٹھیک ہو گیا نا, ہمیں یہی بات ہے بھائی. तो जो ठीक हो गया ना थोड़ा बहुत, तो समझ लीजिए बहुत बड़ा हो गया जैसे, ये बहुत बड़ी चीज है। हजार से हो गया, नमाज से हो गया, भाई अदब कर रहा था ना, एहतियात से चलो, ऐसी बातें नहीं करो। कहते जाहिल गलती करे उसकी पहाड़ जितनी गलती छोटी हो जाती है, पढ़ा लिखा गलती कर उसकी छोटी गलती बड़ी हो जाती है। जो पढ़ा लिखा इंसान है ऐसी जल्दबाजी की बातें लिखता है, मेरे साथ भी बदतमीजी खुदा रसूल के साथ भी। कुर्बानी वहां बेकीमत है खुदा रसूल, क्या बताओ। आका जी का मुखलिस भी खतरे में, आका जी रोज कहते फरमाते थे खुदा की कहते फरमाते थे, नबी आका जी कहते मैं 100 दफा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ता हूँ आका जी कहते। जो सच्चा तलब होता है उसमें आजजी होती है, जिल्लत होती है, इंकिसारी होती है, ऐसे तरीका कि जल्दी अच्छी नहीं है। मूसा साहब में जल्दी की दूर जल गया था, क्या क्या हो गया था। जिनको खुदा का खौफ कुछ आता था वो ऐसी बातें तो नहीं करते थे, ये तो सरकशी की बात है। गुजरते रोज शीशा देखते थे, हालांकि अल्लाह वाले तो कहते कहीं खुदा के गजब से मेरी शक्ल काली तो नहीं होती, तुम ऐसे देखते रहो। देखते सुबह उठते थे तो उनको कभी कभी पेशाब करते, पेशाब में खून आता था खुदा के खौफ से। खाना पीना जी जी के कारोबार बढ़ने से लगा हुआ, मुझे कुछ सुकून मिला है, यहाँ रहमत का रास्ता मिला है, शुक्र करो खुदा का। मेरी तरफ से तो माफ़ी इंशाल्लाह दिल से, लेकिन तंबी तो करनी होती ना, ऐसी गलती ना करें। और अल्लाह से और आका जी से माफ़ी मांगी जब इस काबिल नहीं था, इतना तो मुझे खुदा ने कर दिया है। फिर हदीस में आता है जी, जो किसका शुक्र ना करे खुदा का भी शुक्र नहीं करता है। तो खुदा सब कुछ किया तो वसीला मैं बना, तुमको मेरे साथ अच्छा सलूक रखना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए बोलने में लिखने में। हजरत अली क्या फरमाते हैं, फरमाते हैं हजरत अली मुझे घर सिखाया, मैं गुलाम हूँ, जहाँ मर्जी भेज दे। बताया अदब इलम से पहले है, खिदमत से पहले है, इबादत से पहले है। जिसमें अदब ना हो उसकी इबादत बेकार, उसका इलम बेकार, उसकी खिदमत बेकार है। हाँ, अगर मैं इखलाक से खुल डुल के बोलता उसका मतलब नहीं कि आप इतनी जुरत कर रहे, मुझे तो नुकसान नहीं बर्दाश्त मिले, तो तुम लोगों को नुकसान होगा, बेअदब हो जाओगे। मैं इसी अगर ऐसे ज़्यादा खामोशी से बैठूं या ऐसे जैसे कहते हुए एहतियातों से बैठूं तो ये आम लोग मेरे पास नहीं आ सके। इससे हंसता रहता हूँ, इससे दिल लगी करता हूँ, इससे करता हूँ, जैसे कोई बच्चों से खेलता रहता है तो पंगा भी आ जाता है, हर किस्म का आदमी आ जाता है, उसको सुकून होता है। अरे पाबंदियाँ और ऐसे जैसे कहते हैं आदाब रख लूँ ऐसे ऐसे, तो फिर वो जो सुलझा हुआ आएगा बाकी के बेचारे सारे भाग जाएंगे, तो कोई नहीं आएगा। नहीं भी होते ऐसे दिल लगी करना शुरू कर देता हूँ, काम होगा छेड़छाड़ी दिल की बात है, फिर उनके दिल मुतमिन होता है, वसत मिलती है, हम उनके साथ गुजारा कर सकें। वही चुप रहा इतना बड़ा मौलाना पीर साहब से, हम क्या गुजारा करूँ, दूसरे सलाम करके भाग नहीं, ये भी गुस्सा हुआ, ये भी गुस्सा हुआ, वो बदमाश आ गया, वो भी गुस्सा हुआ है। और कितने बदमाश यहाँ आते हैं, अक्सर मेरे पास बदमाश आते हैं ईमान से, अक्सर लोफर, हम चाहते हैं लोफरों को, और उनको वसत मिलती है ना यहाँ। मैं बड़े मरीजों को जाता हूँ, छोटे मरीजों को नहीं जाता, वो देखो लोफर, उसको कोई नहीं संभालता, मैंने संभाल जिसका आपसे झगड़ा हो गया। लेकिन आपके आखिर बुरा नहीं था, आका जी के जो मुसीबतों में सब्र करे दर्द भी आपको भी अजर मिला, उस बिचार पे तो थोड़ा इताब आ गया, कुछ आपकी नाराजगी, कुछ मेरी नाराजगी, कुछ ना कुछ चले ठीक हो जाए, तो आका जी हमारी नाच सुने खुश हो जाते, हमारा क्या करते, हमें दुनिया को नहीं सुनाना। और फिर हमारी जो जबान हो वो हमारा दिल भी हो, इजहार जबान से क्या करना लोगों की वाह वाह, और जाके अमल सारे उल्टे सीधे करना वो बात ही नहीं है। तो क्या नाच करें तुम्हें लोगों को दिखाने के लिए, शोहरत के लिए, जैसे बड़ी बड़ी किताबें लिखते हैं, तकरीजें लोगों से लिखा लेते हैं, हाँ फलानी जगह गया, फर्स्ट स्टेज पे चढ़ा, उधर चला, उधर चला, तकरीजें लिखा ले, ताकि हालात देखो बात नहीं करना। या इस वजह से कि एक और सफर अल्लाह माजी का वाकया दोहरा दिया कि आका जी कभी थे और ये ऐसे गुजरे ऐसे हम कैसे देखते थे, तो आका जी को सामने समझते सामने हिजाब आते हम लोग नहीं देखते दूसरी बात आपने खुद पर मसाली कायनात को ऐसे एकदम जैसे मेरे हाथ में अगर हम चाहते हैं उसकी मर्जी के मुताबिक हमारे यहाँ मामले सारे हों जैसे वो चाहते हैं ऐसे उनके मिजाज के मुताबिक हों, और हम आजकल चलते हैं कि वैसे एक वाकया मिजाज का थोड़ा कर लिया या कोई बड़ी रात को कर लिया जिससे हो गया मामला तुम्हारा थोड़ा सा, जब तक कि तुम्हारा मिजाज आका जी से नहीं मिलेगा और आका जी के मुताबिक तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बननी, तो फिर दिल लगे तो ना तो दिल एकदम थोड़ी लगता है। हम तो इस हिसाब के साथ आजकल चलते हैं जो मर्जी में आया मानी आका जी की बात जो मर्जी नहीं मानी अपने हिसाब से उसके हिसाब किताब से तो नहीं चलते। असिक नाथ खां उधर आए वो खुद ही तारीफ करता था बेचारा अच्छा था, ये तनकीद के तौर से नहीं कह रहा हूँ कि तुम इसको गलत ले लो, हाँ गलती तो बैठा तो है नहीं क्योंकि एकदम मेरा मिजाज का तो समझ एकदम आएगी नहीं, इंसान किसके साथ रहे फिर इसका मतलब निकालता इसका मकसद तो एकदम मेरी मिजाज को नहीं जान सकता ना मकसद निकाल सकता, हो सकता तू गलत मफहूम और गलत मकसद लेकर चला जाए, वो पढ़ता था बड़ा फिर सुल्तानी उल्तान उसको कहती लेकिन बड़ी ज़बरदस्त नाक निकले हैं मुझसे तो ऐसे ही लिखता है ऐसे करता है आखा जी के मतलब मुझसे बड़ी कुर्बानियाँ और ये तो छोड़ दो, एक महीने माँ बाप मैं किसका मुँह ना देखा अल्लाह ताला के लिए, इंसान जिहाद में जाता है सारी उम्र घर को छोड़ देता, दिल ऐसा होना चाहिए आका जी के लिए सर सब कुछ छोड़ना पड़ता तो छोड़ उसका एक महीना घर नहीं जाना है इधर ही बैठा तो ये नाथ खीनसाल इतना इजहार दिल मोहब्बत का किया है इजहार इतना करना अंदर कुछ भी ना होना, मैं बच्चों को देखता हूँ जिनको मरते नहीं जाना चुप हो गया बेचारा, मुझे फिर बोलते हम लोग कमजोर है मुझे खुद ही दरवाज़ा खोल कोई गलत लफ्ज़ ना निकाल दे आका जी के मुतल मुझे क्या बोलते हम कमजोर हैं इतने ताकत नहीं है हाथ से हाथ हो गया फिर बोला हम कमजोर ऐसा लिखना मेरे नाते किताब की सलाह करो मुझे क्या सलाह कर तुम अपने को सलाह कर लफ्ज़ों की क्या सलाह कर लफ्ज़ों की क्या सलाह करनी आगे इंसान की अपनी सलाह होनी चाहिए लफ्ज़ों की सलाह होनी चाहिए, ये तो फंक के हिसाब से तुम लोग लिखते हो या दुनिया को दिखावे के हिसाब से लिखते हो या इजहार इतना करते अंदर उसका सौवा हिस्सा भी नहीं होता है, तो हम भी जो पढ़ते हैं हम लोग भी ऐसे ही हैं, उसको जब कभी कभी कहते हैं ये जो पढ़ते हैं ऐसे ना कम जो पढ़ते हैं हम ऐसे ही हैं, इस नीयत से पढ़ो कि हम ऐसे पढ़ते हैं ताकि हमें जज्बा पैदा हो जाए हम ऐसे हो जाए, ये पढ़ो और ऐसे ना कम जो कह रहे हैं हम हैं भी ऐसे ऐसे हैं हाँ ऐसे हैं, क्योंकि जो पढ़ते हैं यहाँ भाइयों कहता हूँ उसमें ये नीयत रखो ताकि आका जी के साथ लिफाक ना हो, हाँ इजहार इतना करते हो तुम्हें तो आका से मुनाफ़त किसी मुसलमान के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, हदीस में हदीस में आका जी के तो अपने भाई के लिए कुछ इजहार करता है और तेरे में वो चीज़ नहीं यानी हमदर्दी या मोहब्बत किसी चीज़ का इजहार करता है तेरे में वो चीज़ नहीं है, अज़मत अल खियाना तूने बहुत बड़ी खियानत की है मुसलमान भाई के साथ, इसको तसल्ली दी किसी बात की या हमदर्दी का इजहार किया या मोहब्बत का इजहार किया और तेरे अंदर वो चीज़ नहीं तुम्हें बहुत बड़ी सुना ऐसा अक्सर ऐसे करते दिल में नहीं होता बस कुछ करने के लिए धोखा देना जैसे यकीन लोग बैठे पैसा करो सीटते हैं लोगों का बस बिल्कुल ठीक हो जाएगा तजर्बे होते हैं और ना ठीक हुआ तुम्हारी मदद कोई पुरानी लगती है तुमको फिर निकालते हैं बात नहीं बड़ी चीज तजर्बेकार है अच्छा जी जी बात को छोड़ो बस हम आपको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप क्या कहते हैं सालार की गुमानों से अच्छा बना दो जो उनको पता नहीं उनको बता और मुझे तो बख्श दे इस किस्म की दुआएं पढ़ते ये जो करते हैं इनको खतरा नहीं है ये अजमत है खुदा अजमत है लेकिन मुझे अंदर तकब्बुर आ गया फिर बड़ा खतरा होता है इसमें हाथ चूमना हूँ आप पूछा तो शेख बने तेरे हाथ साथ चूमना और मैं कभी ऐसा कर भी लेता हूँ जो मेरे ख्याल कोई मुश्किल से कर जब मजीद आया पूछ लो उससे कि भरे हुए थे सारे कराची वाले ईद के सारे इकट्ठे हुए तो अपने बाप को लेके आया बूढ़े बाप को उसकी उम्र 90 साल होगी उठ बैठ नहीं सकता था ऐसे लिटा दिया उसने ईद का दिन था सब भाई आए हुए थे कराची वाले भरे भरे भरी हुई थी शक मस्जिद में आया मैंने कहा अल्लाह के तो लोगों को तवाज़ो कहता कहा ये बूढ़ा आदमी है इसकी तवाजो कर रहे, इनको मत देखना, इनको क्या देखना, इनसे क्या मिलेगा। ये मिठ में ईमानदार भी हो सकते हैं, कोई नुस्ने के बेईमान भी हो सकते हैं। जरा मामला तो खुदा राखा जी चला रहे, ये थोड़ी चला रहे, तो तवाजो खुदा के लिए कर, इनको नजर मत रख। जैसे इनको हकीम साहबों को गुस्से वाले लग गए ना, इनको पैमंद वाले कपड़े पर गद्दों पर बिठा के फिरा दो, सोच रहा आका जी से अजमत किसकी ज्यादा है। हदीस बुखारी शरीफ, आका जी का जिसने पैमंद वाले कपड़े डाले और गधे पे बैठा बाजारों में, उसने तकब्बर नहीं किया। एक तो क्या सी औलिया अल्लाह के मसले, वो भी मानने चाहिए, उसने वो तो मानने चाहिए जो आका जी ने खुद किया है और उसका कहा भी है, उसमें भी उसको आर, वो इंसान इंसान है समझो, उसमें 100% तकब्बर है, उसकी बात बात शैतान की तरह। क्या आका जी के बाद उसके लिए कोई हुज्जत है? एक तो जो हमारे इश्तेहादी दूसरे कही तो भाई उन्होंने क्या किया है, कैसे हैं, एक चीज आका जी ने खुद किया है, करा खुद गद्दे पे आका जी बैठे, पैमाने के कपड़े भी डाले। सोच रहे, एक जनरल आज को बोला जी उसको तो ठीक हो गया, वो अब भी कहता है ठीक है, उसने दाढ़ी भी रखी, पता है इसकी बातें अचानक हुई अलहदा मिलता, कोई बातें शायद ऐसे हुई, कहकर तू अपने को इतना वो समझता है, तेरे अंदर खुद खुदा की अजमत रसूल का असर है, तू अपने मुझे बातें सुनाता, मैं जनरल था, ये किया वो किया, हाकिम रहा और अपने वो सुनाता। मैंने कहा आका जी का हुक्म कोई अजमत नहीं रखता, मैंने कहा बातें सुनते जिनका आका जी ने हुक्म किया, बाजू का हुक्म नहीं किया, करो तुम्हारी मर्जी ना करो तुम्हारी मर्जी, वो हुक्मन नहीं। मैंने दाढ़ी का आका जी ने हुक्म किया, मैंने कहा बातों से बात चली उस जनरल को, मैंने बोला बबल, मैंने कहा तू कितना बड़ा नाफरमान है कि पढ़ा लिखा ऐसे स्टेज पर है तू, और तू दाढ़ी मुंडा, तेरे से बड़ा कोई कमबख्त है? और भी ऐसी बात है, चुप। मैं कहा तू चाहता खुदा का कुर्ब हो, नबी का कुर्ब हो, वो जनरल बन के कुर्ब नहीं होगा, खुदा रसूल के आगे अपनी अजमत छोड़नी पड़ेगी, अल्लाह रसूल के आगे आलिम आलिम नहीं है, सैयद सैयद नहीं है, बड़ा बड़ा नहीं, वहां सब 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 लोग हैं। खुद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सजदा करते थे खुदा का और आजजी करते थे, या और नमाज के अलावा भी आजजी की बातें आका जी सिखाते थे उम्मत को, हदीस में बहुत कुछ है। एक तो ये सो सो चुप हो, मैं क्या एक ये बातें करना दाढ़ी वाले करते नहीं करते, मैं क्या वो तो बातें अलग है, करते नहीं करते, दाढ़ी वालों के पीछे चलना या फलाने दाढ़ी वाले, हमसे ताल्लुक तो रखते हैं आका जी से, कि वो जो फरमा उसमें हमको गैर से ताल्लुक नहीं है, आका के हुक्म को देखो। चुप हो गया, मैं कह बाकी बातें छोड़े, मैं कह तुम गद्दे पे कहीं बैठ सकते हो बात समझ, घर में कर लेता, मैं घर में नहीं, आका जी ने कहा बाजार में गधे पे बैठे, बाजार में पैमंद वाले कपड़े डाले, मैं कह लेफ्टिनेंट का भी धोई, कहते घर में होंगे, लोगों के सामने धोई है, जब कहें लेफ्टिनेंट धुलवाई, ऐसे बैठ गया, और इतना अच्छा आया नहीं, लेकिन है अकल वाला, अकल वाला। कहते दाढ़ी उसने रखी, जागे तो पूछने की रखी नहीं रखी, बोलता है पौनी उसके करीब तो निकल आई उसकी जनरल की, उसके सारे दोस्त हैरान, जनरल को क्या हो गया समझे, उसके एक बड़ा वकील भी लेके आया कहीं से, कहता है ऐस करान उधर कराची में, तो वकील पास बैठा हुआ था, बोलता है जोकील को, बोलता है तुम्हें दाढ़ी को ना देख, कभी बड़े नुस्खे मैंने बड़ा ठीक हो अभी तक मैं ठीक, और मुझको या आका जी ने जो काम हुक्मन कहे हैं, जनरल कहता कहता मुझे पहले करने चाहिए, इसे साल में दिल में डाल, तुम औरों को देखता कि तुम आका से ताल्लुक रहना, तो आका के रास्ते को देखो तुमको क्या फरमाते हैं, तुम अपने हुक्म की बात करते हो कि मैं जनरल था, ये था मेरा ऐसा वकार था, और आका की अजमत तुम्हारे दिल में है, अपनी मर्जी से जो करते हो अपनी मर्जी जो नहीं, ये तो ताबेदारी आका जी की नहीं। तो कहते उसको बड़ा इसका असर हुआ, आदमी पौनी समझा की चीज रखता है ना इंसान, ऐसे ही रखो तो क्या पता, समझ में उसका ना आका जी कौन सी अजमत वालों का हुक्म, कितनी अजमत तुम्हारे दिल में रखता है, तुम्हारे दिल में कितना ईमान है आका जी के लिए, इससे अंदाजा होता है ना उसको, कौन बहुत वो असर हुआ जी। कहते जाते ही उसने जनरल साहब ने इतनी रखी, और वो भी बोलता बोलता मैं ठीक नहीं, उसको बातें सारी याद है, फिर गधे पर भी चढ़ना है, पैमान पर भी जाना है, और भी बातें हदीस की सुनाई है जी, नौकरों के साथ खाना खाना, और आका जी ऐसे ऐसे काम किए हैं, उससे तुम्हारी आकाश से अजमत ज्यादा हो सकती है। तो बोला था मैं ठीक नहीं। उसकी एक बात बड़ी पसंद आई, कहता उसके दिल में आका जी की अजमत का असर आ गया। बोलता आका जी की बातों को मुझे पहले करने चाहिए थे काम। हम हुकूमत कितने काम करते इतनी मानते हैं और आका जी का हम भूले हुए, ये काम मुझको पहले करने चाहिए थे। कहता दिल से वजीफे पढ़ता है, दिल से करता है, बड़ों बड़ों को लेके आ जाता है। तो कुछ ऐसा मसला है, अल्लाह ताला तौफीक दे। इसमें मतलब तआवुन आपस में करते हैं कि मरने से पहले हमारा कुछ, जिसको कहते हैं मोहब्बत का सही माने, कुछ ना कुछ तो रब्ता होना, जबानी रास्ता नहीं चलेगा। सही रास्ता आका जी से हो, वो जमाने के माहौल को लोगों को नहीं देखेगा, वो आका जी को राजी करने के मामले में अपना उस अमल को करेगा, कोई कुछ कहे या ना कहे। ये तो पहले समझाना पड़ता है, जेन बनाना पड़ता है, फिर जाके उसको सोचना पड़ता है, फिर वो कहता हाँ तो ऐसा, फिर के नफ्स पर बोझ, दिल पर बोझ। आका जी का दिल बैठे, तू कहता मैं नहीं बैठूंगा। आका अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसी बात सोचने से डर लगता है। कितनी अजीब हस्ती आका, उसकी मिसाल मिल सकती है। अपने सहाबा की राशि मोहब्बत से बैठते थे, कहते घुटनों से घुटना लगा होता था। और जैसे जमाने में ऊन ये चीजें और तरह होती थी, ऐसी सफाई से कपड़े नहीं होते थे, तो उनमें बास आ जाती थी बकरियों की, तब भी आका जी से यानी वो नहीं होते थे बैठे रहते। और आग की खुशबू ऐसी थी मुश्क से बेहतर पसीना, लेकिन उनके साथ बैठे मजलिस में आते थे तो कहते थे किसको उठाते नहीं थे, जहां जगह मिलती थी बैठ जाते, अपनी मजलिस को उठे ऐसे ठीक नहीं थे ऐसे कहा। अल्लाह ताला करे हमारे उनकी तमन्ना आ जाए, तुम देखो फिर कैसी कुव्वत दिल में आती है। उसकी रूहानियत में बड़ी जबरदस्त ताकत है, ये सारी कायनात खुदा उसकी रूहानियत से खड़ी आकर जी बमा अरसलना का इल्ला रहमतना, सारा धमाका हो जाए, इतनी जबरदस्त ताकत है। तो ऐसे रस्म कितना अदब से चलना चाहिए, कितना खामोश होकर चलना चाहिए। ऐसे खुला बोलना, खुला खत लिखना, जो जो समझ आ जाए, फिर जो कुर्बानियां दी भी उसको बेकीमत खुदा के मांग गए, उनको हाजत नहीं है। लेकिन हुकूमतों के मामले दोनों को हाजत है, हुकूमत को भी हाजत कुर्बानी की, तुमको भी, लेकिन उधर ऐसा नहीं है। तो एहतियात से चले आप। अच्छा जी इजाजत नहीं, किस्मत से आ जाते हैं, फिर जाके सब कुछ भूल जाते हैं, फिक्र तुमको दूसरी लगी है। तो जब दिल में कुछ चीज लगे तो फिक्र लगी रहे ना, और असल फिक्र यही लगनी चाहिए ईमान वाली, बाकी तुम्हारे साथ कुछ जाएगा तो नहीं। लेकिन इस दलदल से निकलना किस्मत का काम होता है, उसी से निकालने, अगर ये आसान चीज होती तो अल्लाह ताला अंबिया को ना भेजता। ये बड़ी मुश्किल चीज है लफ्ज को छुड़ाना इन चीजों से, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये अल्लाह के करम से होता है। अच्छा जी हम आपको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप क्या कहते हैं वजीफा लिया उसने? हाँ सर आपने भी लिया हुआ, कॉलेज में वजीफा देते हैं, उन वजीफों को आका जी के वजीफे से अफजल समझते हैं। इसको अंग्रेजी बड़ी अच्छी आती है, कुरान अच्छा आता नहीं आता, आते कुछ भी नहीं आती, उसकी अल्फाज भी नहीं आते, सिखाते इस वजीफे को सही पढ़ो, बीसी में नहीं चलाते, अंग्रेजी सिखाते हैं, जर्मन से भी सिखाते हैं। हाँ ये वो वजीफे पढ़ते थे, अब इनको इधर लगा रहे हैं मनुष्यों को, इधर वजीफे इस तरफ वजीफे बहुत जबरदस्त है, इस तरफ हजरत मोहम्मद मुस्तफा उनका वजीफा तुमने दिल से नहीं पढ़ा ना, पता नहीं चलता इस वजीफे में क्या है, कहा नहीं पढ़ा ना, भटक करा दिया। वजीफे हैं जी बड़े वजीफे, तो ज्यादा पढ़े डिग्रियां मिलती हैं, चल रहा जो ये वजीफे पढ़ो, हिजब इख्तदार हिजब इख्तिलाफ खत्म हो गया, हिजब इख्तदार बस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह रसूल की ताअत से बागी नहीं होगा, इक्तदार सारा होगा, उस इक्तदार से बाहर छूट नहीं सकते सब। हमको तो ये सबक मिला, हम तो उधर ही सब सारा इक्तदार उधर। कुल अल्लाहुम्मा मालिक अल मुल्क तूति अल मुल्क मन तशा व तंज़िउ अल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिका अल खैर। बहुत कॉलेज के डॉक्टर ठीक हो रहा है। उसके बाद क्या तो डोंकी थे हम, जो नमाज में पढ़े डोंकी नहीं, जो दुरुशी से पढ़े डोंकी नहीं है। देखो ना मैं सही बात कर रहा हूँ, जो माई डियर के साथ इकट्ठा पड़े डी डोंकी नहीं, बेगैरत नहीं, और दिलवादी भी मान रहा होते सही बात। हमारे डियर के साथ नहीं बैठना, हाँ काजी साहब को बुलाना है, उसको बोलना भाई हम लोग कुछ कर आपस में तल्लुकात करना चाहते हैं, टेलीफोन नहीं करना है, ऐसे तल्लुकात नहीं करना, खत नहीं लिखना है, काजी साहब के पास जाना, उसमें कोई तुमको खौफ नहीं होगा, हम तल्लुकात करना चाहते तरीके से हर चीज के दरवाजे से, तो खैर बेतरीका चीज करो फिर उसमें मुसीबत आती है। एम आई डी फिर आजाद भी लिया, एम आई डी अगर अगर उसके उसूल से होगा, बेउसूल से चलोगे तो फिर ठीक नहीं होगा। माशाल्लाह बच गया जी, लोग गोलियों से मर जाते हैं, गोलियों से बच गया, दो लगी तीन लगी बचा हुआ बैठा माशा, रिशे पढ़ते थे ना अल्लाह की रहमत भी बचाती है, वो भी सब हर चीज सबब है, लेकिन बड़ा सबब है खुदा की रहमत, वरना अपनी तरफ से तो काम तुम्हारा कर गए थे, लेकिन खुदा ने तुम्हारा काम नहीं होता शायद अल्लाह बच जाएगा, वो बचे माशाल्लाह तबारक अल्लाह, बात भी कर रहा है बैठा पूरा, फसल भी ठीक है, जान भी सारी ठीक है, ऐसे बहुत कुछ माफिया मिली होंगी खुदा से, हाँ बाद तकलीफें आती हैं ये सब बनती है गुनाह माफ किए जाते हैं, जो आदमी जिक्र करे दुरूशी पढ़े नमाज पढ़े फिर उसको तकलीफें आए तो समझो खुदा उसको जहन्नम और आखिरत की मुसीबतों से छुड़ाना चाहता है, उसको इस चीज़ में सब्र करा के बड़े बड़े गुनाह माफ हो जाएंगे हाँ, और बड़े बड़े दर्जे मिलेंगे हाँ। और जो आदमी नमाज भी ना पढ़े दुरूशी भी ना पढ़े माँ बाप के साथ भी बदतमीजी करता रहे उसको कोई तकलीफ ना आए, हाँ जी समझो कि बगैर तौबा के मर गए उसको बड़ा अजाब आ सकता है, ये ना समझे कि खुशकिस्मत है कि नमाज भी नहीं पढ़ता, हाँ जी खुदा से बागी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत से इसका दिल खाली है, हाँ जी और माँ बाप के एहसान का कोई इसको परवाह नहीं है, हाँ जी फिर इसके पास सब कुछ है ठीक ठाक, और ठीक ठाक है ना इसको मौलत दी गई, इसको तोबा नसीब नहीं होगी बगैर तोबा की मरेगा, ऐसे बस जिसको सजाओं से खुदा बचाता है तो आका जी कहते हैं यज्जिल्लाहु अल्लाहुल अकूबा, उसके लिए खुदा तकलीफें दुनिया में भेजता है, वही तकलीफें उसको खुदा की मोहब्बत में भी लगा देती हैं तौबा में, और जो गुनाह किए होते हैं वो सजाएं माफ़ हो जाती हैं, ईमान से चला जाता है, बाज़ार की चीज़ों में जल्दी करते हैं बेअदब हो जाते हैं, जी हम तो पढ़ते हैं वो पढ़ते उसको कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं कहना चाहिए, किसी को यहाँ होता है किसी को आखिर में होता है, जिसको यहाँ होता बड़े फायदे में रहता है कि थोड़ी सी तकलीफ में बड़ी मुसीबतें टल जाती है, इसको यहाँ कुछ नहीं होता है तौबा की माफी वाफी सब की खत्म हो जाती है, उसको अजाब के दरवाजे खुल जाते हैं, तो जिस चीज को आका जी बताया नेकी में खैर है बुराई में शर है ऐसे ही समझना चाहिए, ऐसे नहीं ख्याल करना चाहिए कि नेकी में फायदा नहीं बुराई में कोई नुकसान नहीं, देखो उसको नुकसान नहीं होता, उसका नुकसान तो हो रहा है तुमको पता है, ईमान का नुकसान हो रहा है, आखिरत का हो रहा है, तौबा नसीब नहीं है, नमाज नसीब नहीं है, दूसरी नसीब नहीं है, शर्म हया से निकल गई है, तो बेहया में ईमान तो नहीं होता, तो ऐसी गलत सोचें शैतान दिल में डालता है, जब बाज़ नादान दोस्त होते हैं वो कहते हैं देखो उसको देखो, बल्कि उनको देख के तकब्बुर भी नहीं करना चाहिए कि खुदा हमको आजमाश न जाए, खुदा उसको हदायत दे दे बस, उसके लिए भी हदायत की दुआ कर दे, हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप क्या कहते हैं कोई याद नहीं आया शोर से सब को याद कर लेता हूँ, ताने के तौर से नहीं कहता हूँ, इसको मरज ज्यादा उसको एडमिट होना चाहिए जब तक इसमें जान पड़ जाए, आते भाई के साथ आया एक कुछ दिल का अच्छा नजर आता है पता नहीं शक्ल तो नहीं कुछ अच्छा है दिल का पता नहीं दिल का भी होता है जैसे कोई किसी चीज से तो तवज्जो देता अगर ठीक हो जाएगा खुदा रहमत की जल आया मेरे तो आता ही ना आया तो आता ही ना, नहीं तो बता रहे मत नहीं करता ना, कभी नहीं घुसता है ऐसी जगह, शैतान उसको आने नहीं देता, रहमत हुई तो आ गया। तो ये बातें सुनी आका जी की, इसको दिल में नक्श कर और नीयत ठीक कर। अमल में इंसान कमजोर भी हो जाए, गलतियां भी हो जाए, नीयत ठीक है तब भी गाड़ी निकल जाती है। नीयत खराब हो, अमल कमजोर हो ना हो, उसका बेड़ा गर्क ही हो जाता। नीयत को आका जी ने मुकदम रखा, नीयत बड़ी अच्छी थी, नीयत तो रखा, मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं तहज्जुद पढ़ूंगा, मैं गुनाह तो गुनाह हो जाते तौबा कर ले, मैं सब चीज इरादा रखता हूँ, नीयत का कम नहीं करूंगा, बेड़ा पार हो जाता। जो नीयत खराब करी, नहीं जी इतना कौन करे, हो जाता है इंसान से, अब हर वक्त यही पढ़ो यही पढ़ो गुस्सा पढ़ो, तो पढ़ने के बावजूद बरकत रहमत नसीब नहीं, नीयत ठीक हो बाकी खैर ठीक है। अच्छा जी, हम आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, आप क्या
वालेकुम सलाम।